करके और निकले। देखा जब वो कुंजरिन बैठी है उसके समीप गए जाकर के और हाथ से उन्होंने गेहूं उठा लिया। ऐसे तो देगी नहीं, हाथ से उठा लिया, कुछ बुद्धि भी अब हो गई, किंतु इनके इन भागों से खेतों से जितने गांव के अन्न थे वो सब कुछ गिर गए, भले ही दो एक इधर में लग गए हों और बाकी वैसे पर पहुंच गए। फल दो बड़े मस्ती से उनका रुख देखते ही वो एकदम ठग सी गई। सोची जैसे जब ही ये बच्चा हमारी गोदी में आ जाए और इसको लाड प्यार कर सकू तो हमारा जीवन सार्थक। उन्होंने कहा बेटा तुमको तो दे तो तुम ही फल, किंतु ऐसे नहीं देंगे, तू तो क्या लाया हाथ में, तो हाथ में तो कुछ है नहीं। तो देखा जो सचमुच में नहीं, कहा जैसे एक शर्त है, तू यदि मुझे मां कह दे तो मैं तुमको ये फल से भरपूर कर दूंगा। उसने देखा जैसे इसको मां कैसे कहे, विशेष करके इधर देखने लगे, इधर देख कोई देखता है कि नहीं। देखा जो मैया घर के अंदर में कोई गोपी भी नहीं है, कोई दूसरी भी नहीं है, इधर उधर देख करके और जल्दी से एक सेकंड के अंदर में उसके गोदी में बैठ गए और गोदी में उतर के झट उठ करके और कहने फल दो फल दो। वो एकदम निहाल हो गए, उनके हाथों में कितने फल आए, अंगूर के दो चार दाने लग जाए, आम एक दे दिया तो उसी से भर जाएगा और फल कदम्ब के ले आई है और तरह तरह के फल लाई है, जितना आ सका उनके हाथों में मीठे मीठे फलों से भर दिया और कृष्ण उसको ग्रहण कर। वो तो बाबू होकर के देखती रह गई, कृष्ण थुनुक थुनुक नाचते हुए और वहां से घर की तरफ में गए और वहां जाकर के मैया की गोदी में बैठ गया और मैया के अंचल में सब कुछ डाल दिया। हमें कहां से ले आया, कृष्ण ने इशारे से कहा वहां से ले आया और वो फल लेकर के और सबको देने लगी। यशोदा मैया उनकी हजारों सखियां बैठी थी कृष्ण के दर्शन के लिए, वो फल इतना देने लगी कि वो फल समाप्त ही न हो, कृष्ण के हाथों में आकर के और वो फल अनंत हो गया और वो देते देती सबको थक गई, किंतु जैसा करता था वो फल बना। इधर वो कुंजरी कृष्ण को अपना चित्त मन सब कुछ दे दिया, एकदम बावली हो गई, टोकरी उठाई, पता नहीं जो वो खाली है कि भरी पड़ी। जब उठा करके गोकुल से लौट करके और जमुना के पुल पर आई, जमुना कुशल पुल तो था नहीं, जमुना के किनारे आई, देखिए ये टोकरी तो बड़ी भारी है, क्यों फल तो नहीं है, असंख्य चिंता दुनिया रत्न जवाहरात हीरे सबसे खड़े पड़े। उसको देख करके सोची कि इनसे अब हमारा क्या मतलब है, उसको लेकर के जमुना में उड़ेल दिया, सब रत्न उसी में जमुना में चला और उसके बाद में वो घर नहीं लौटी। कहां गई, आंसुओं से एकदम तरबर होती हुई एकदम कृष्ण के इसमें शुद्ध बुद्ध में एकदम पागल थे और केवल यही जाती
वो गोविंद
खे संतुरा संघंतो मुसलई प्रमुखा गायंती गोप्या जनता दादा गोविंद गोविंद।
इसी प्रकार से वो पागल होकर के ब्रज के गांव गांव में गलियों गलियों में और सर्वत्र वो भूत ढूंढने लगा। कृष्ण को खुशी खुशी अंत में तन्मय होकर के उसको ब्रज में ही उसको स्थान दिया और एकदम कृष्ण की प्यारी वो भक्ति हो गई। इस प्रकार से
और लोग भी उसमें तन्मय हो गए। वो गलियों में राधे राधे
जय पायनो विरह करेपी तवैवास्मी न तद्दिमां त्वया विना नारायणं नमस्कृत्य नम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीं।
श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से आज हम लोगों का पंचम दिवस आरंभ हो रहा है। कल बहुत सुंदर रूप से शुद्ध रूप से कृष्ण का जन्म आविर्भाव और उनकी अन्य लीलाओं का वर्णन हुआ। कृष्ण 3.5 वर्ष के हो गए हैं। अब वो चलने फिरने लगे, चोरी करना भी सीख लिया है, किसी ने सिखलाया नहीं। पूर्व जन्म का उनका ऐसा ही संस्कार है। सबसे बड़ी बात कि जो उनका भजन करता है, जगाद्यस्त अनुग्रह ना थी तब हरिष्य तब उसके उसका जिसमें आसक्ति की बात है सबको वो हरण कर ले, जिससे कि उसको कभी न छोड़ सब कुछ उसका ले ले। यहां तक कि गोपियों के राधिका जी के इस कुल को दोनों कुल माने क्या, नदी के जैसे दोनों किनारे होते हैं, तो लड़कियों के दोनों कुल होते हैं, एक पितृकुल ससुर कुल इत्यादि सभी, वो सबको वो हरण कर लेते हैं। और गुकुल माने होता है एक दुपट्टा, उसको भी हरण करते हैं, अंत में उनका मन भी हरण कर लेते हैं, उनका सर्वस्व हरण कर लेते हैं। और परोक भिक्षु पति गेहा नीनम, उसे भिक्षु और मीरा जैसे और गोकुल जैसे उनको पथ का भिखारी भी बना देते हैं, तो आप लोग डरे मत, यदि ऐसा हो जाए तो जन्म जन्मांतर बन जाएगा, ऐसा होना बड़ा कठिन है। इसीलिए दूसरे लोग कृष्ण का भजन नहीं करते, क्योंकि कृष्ण आंशिक रूप में कुछ नहीं लेता, संपूर्ण रूप से ही वो लेता है। यदि कृष्ण का एकांतरिक में भजन कर ले लग गया, उसके सब पूजा पाठ दूसरों देवताओं देवियों की पूजा इत्यादि सभी कुछ वो दूर कर करके अपने चरणों में संपूर्ण रूप से ले लेते हैं। गोपियों के घर में चोरी कर, चोरी के बहाने उनका हृदय चारों तरफ से लेने लग गए। गोपियां ये प्रार्थना करती थी नारायण से, अपने कुल देवता से, ये बच्चा हमारे घर में दूध दही चोरी करने के लिए आया, मक्खन चोरी करने के, और लाने के बहाने फिर चली जाती यशोदा मैया के लिए और कृष्ण का दर्शन। कभी कभी बहाने बना करके कृष्ण अपने सखा मंडली के साथ में चले जाते, और उनके घरों में जहां छिपा करके रखा है मक्खन, अपने खाते बंदरों को खवाते, साथियों को खवाते, और यदि किसी गोपी ने पकड़ लिया, अरे क्यों मुझे पकड़, मैंने तो इसको अपना ही घर समझा, ये तेरा घर है कि मेरा घर है, और ऐसे मंद भरे मुस्कान से वो उसके तरफ देखते, ये गोपी हंसती रह जाती और फिर छोड़ दी। कभी एक गोपी ने उनको पकड़ लिया, गदी में हाथ लगा रहे हैं, झट उसी समय आकर के पीछे से पकड़ लिया, कहीं मुझको किस लिए पकड़ा, अगर तुम यहां पर दही या मक्खन चोरी कर रहा था। कृष्ण ने बोले, जैसे मैं तो अपना बछड़ा खोज रहा था, तो तुम्हारा बछड़ा हमारी हड़िया में टूट गया, अजय हाथ टूट गया देखो, और एक छोटा सा पत्थर मार्बल का बछड़ा नंद बाबा ने खेलने के लिए दिया था, उसमें वो रख दिया था, निकाल कर देखो हमारा बछड़ा इसमें टूट गया। तो भी इसकी बुद्धि पर एकदम प्रसन्न, कितना सुंदर ये बच्चा। एक समय किसी गोपी ने उनको पीछे से जाकर के पकड़ दिया था। आज भोर के समय में यशोदा जी कहते हैं तो यशोदा हंस करके टाल देती है, वो सुनती नहीं है और विश्वास नहीं करती, कहते जी हमारा लड़का तो कहीं घर से बाहर ही नहीं गया, अच्छा तो आज इसको पकड़ करके हम ले चलेंगे खुद अपने हाथों से पकड़ लें। बस पकड़ लिया और वो अंधकार में ही यशोदा जी के घर में गए। वहां जाकर के यशोदा जी को बुलाना देने, देखो मैं इसको पकड़ करके ले आई, तुमने ये पकड़ करके हमारा तो लाला सो रहा है, तो तुम्हारा लाला सो रहा है कि देखो ये चोरी करने गया, मैं पकड़ करके ले आई। तो वो मुख उसका धकमा था, मुख खोला तो देखा उसी का लड़का है जो पकड़ करके ले आई कृष्ण ने। इतने में कृष्ण करते ये वहां से आए, मैया झूठ उनको हमको ये कहती है, मैं अभी कहां सो रहा था और हमारे नाम पर ऐसा लगा करके और अपने लड़के को पकड़ करके मैं वहां का। यशोदा जी कभी कभी उनको डांट देती है, तू जरूर चोरी करने जाता। एक दिन चोरी पकड़ कर यशोदा जी उसको शासन करने लगी, तू बड़ा ढीठ हो गया। कृष्ण रोने लगे और रो करके बोलते हैं, तूने अभी खाया मक्खन चोरी करके, हाथ में लग रहा है, मुख में लग रहा है। तो वो कहते मैया मोरी,
मैं नहीं
माखन, मैंने कहा मक्खन खाया, भोर भयो भगवान के पीछे मधुबन मोह पछाए, भोर हुआ और उसी समय गैयो बछड़ों को देकर के मुझे मधुबन में पठा दिया गोचारण करने के लिए, मैं बिना कुछ खाए थे, तुम्हें तनिक भी मोहर ममता नहीं लगी, बिना खाए पिए और हमको भेज दिया और मैं चला गया। और शाम जब हो गई तो मैं गैयो बछड़ों को लेकर के लौटा करके आया, शाम हो गई, फिर मैंने कब दही और मक्खन चुराया, तुम ऐसे कहती है, मालूम होता है मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं दूसरों का पुत्र हूं और तुमने हमको पाला पोसा ले दिया, इसलिए तुम्हारी हमारे प्रति ममता नहीं है और तू हमें डांटती है और डपटती है। ऐसे कहते ही यशोदा जी के आंखों में आंसू आ गए बरबस और बोली मन ही मन में सोची, और ये तो ठीक नहीं, बस आंसू आ गए और बोली नहीं, तुमने चोरी नहीं की, तुमने मक्खन नहीं खाया। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैयारी मैंने ही मक्खन खाया, मैंने ही पहले कहा था, अब कहते हैं मैंने ही माफ लिखा है। यशोदा जी भी रोने लगे, कृष्ण भी रोने लगे। यशोदा जी ने उनको अब से आज से ऐसा नहीं कहूंगी, और कृष्ण कहते हैं कि आज से मैं भी ऐसे नहीं कहूंगा। ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं हो रही हैं, सबका मन मोहित कर रहे हैं। कभी किसी बच्चे से कहा, जैसे जिसका घर था उसी के घर में गए टोली में, और उस बच्चे से कहा जो उस घर का बच्चा है, और उसे कहा जैसे बछड़ा खोल दे, और उसने बछड़ा खोल दिया बछड़ा खोल दिया, गाय का दूध पीने लगा, और वही बच्चा फिर घूम करके जाता है, अरे मैया वो बछड़ा दूध पी लिया, और वो जल्दी से दौड़ करके बछड़े को पकड़ने गई, और इतने में टोली के साथ में घर में पहुंच गए, और वहां पर दूध मक्खन जो कुछ था वो सब खा आई, भाग करके चले गए। यदि उन लोगों ने चुराया तो उनके अंगों से जो नीम मणि की कांति आती है, अंधकार भी करके रखती है, तो उसे देख करके और चोरी कर। यदि सिक्के पर रखा ऊंचाई पर, किसी नथिया से फोड़ दिया और उसमें गिरने लगा, मुख लगा करके खाने। यदि किसी ने और भी चोरी करके कहीं दर छिपा दिया, अरे बैठ जाओ जहां, पीछे तो आएंगे आगे आना चाहिए ना, कि यदि छिपा दिया तो कृष्ण उसके सोते हुए बच्चे को चिमटी काट दी और वो रोने लग गए। इस तरह से बाल्य लीलाओं को करते 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 जाओ, साढ़े तीन वर्ष के हो गए तो अगला जो करती है ये पीछे से आकर के तंग करती है ना, सब पीछे से आकर के पीछे बैठो, चिंटी का जब साढ़े तीन वर्ष के हो गए, नंद बाबा उपानंद इत्यादि नंद बैठक में सभी लोगों ने सभा करके, बापू जी ये छोटा सा बच्चा है, उतना कहां राक्षसी, विराट राक्षसी वेश बदल करके आई और कालकूट विशेष से पिलाया, किंतु हमारे नारायण तो शक्तिशाली हैं, उनकी कृपा से हमारा बच्चा बच गया, कुछ नहीं हुआ। एक असुर आंधी का रूप धारण करके आया, हवा का रूप धारण करके, कृष्ण हमको देख नहीं सकेगा, पकड़ नहीं सके, पूतना को तो पकड़ लिया, हमको देख नहीं सकेगा, और आकर के यशोदा जी वहां से छोड़ दिया, वहां पर चली घर में चली गई, और उसने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण उसके गले में हाथ डाल दिया, वह आकाश मार्ग में उड़ गया, सोचा कि वहीं से पकड़ करके फेंक देंगे, बहुत चेष्टा की किंतु गला नहीं छुड़ा सका। जो यशोदा मैया जी ने एक धक्का देकर और छुड़ा दिया कहां, और ये हजारों हाथियों का बल लेकर के भी नहीं छुड़ा सका। वहां से कृष्ण ने ऐसा गोल जोर से गला दबाया, रसगुल्ले जैसे आंखें निकल आई, और वहीं से वो गिर पड़ा और वो मर गया, रमण द्वीप में नहीं गिरा, वो यहीं पर गिरा, ब्रज में ही सब लोगों ने देखा और वहीं पर लोगों ने आकर के उसके शपथ, वहां से उसको सबसे कर दिया था, बड़ी कृपा प्रत्याय हमको सुरक्षा करने के। कृष्ण और कुछ बड़े हो गए हैं, जो यशोदा मैया जी कभी दूध मंथन कर रही, गति मंथन कर रहे हैं और कृष्ण पलंग पर सोए हैं। यशोदा जी सवेरे ही आकर के गति मंथन करने लग गए, कृष्ण अकेले वहां पर सोए। यशोदा जी परम सुंदरी, उसमें भी रेशमी वस्त्र धारण किया है, बहुत सूक्ष्म, उनके अंग भी इसमें से झांक रहे हैं, सोने का कंगन है, केशों में फूल की माला है और एक खंभे में रस्सी लपेट कर मथनी में लपेट दिया गया और उसी को घर घर इस प्रकार से दधि मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ में गा भी रहे हैं, ऐसे स्वर से गा रही है, एकदम तन्मय हो गई। दधि मंथन का स्वर जो निकल रहा है मानो ठिकान ठिकान कर, और इधर वाला एक वो तान करा इधर ठिक कर। जो लोग कृष्ण का नाम नहीं करते, कृष्ण का स्मरण नहीं करते, उनको तान ये कहता है तान, मान उन लोगों को ठीक कार है। मनुष्य जन्म लेकर के भी भगवान का भजन नहीं करते और हाथों में कंकण वो जो बज रहे हैं, चूड़ियां बज रही हैं सोने की, मानो सुंदर का ताल उस पर और तन्मय होकर के गति मंथन के स्वर में स्वर मिला करके और होगा गोविंद दामो माधवे गोविंद दामो माधवे गोविंद दामो माधवे उदू खोले सम घृत कंदुलाना संघं तयन्तो मुसलै प्रमुखा गायन्ति गोप्या जनितांगा गोविंद दामो धर्माधवे तन्य होकर के गाय गाते गाते इधर कृष्ण की नींद खुली। नींद खुलते ही कुछ आंखों में अलसाई हुई, इधर देखा उधर देखा, हाथ उठा करके देखा मैया तो है नहीं, तो ऊपर के रोने लगे। किंतु यशोदा जी तो तन्मय हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ा। फिर उसी समय में कृष्ण किसी तरह से बड़ी मुश्किल से पलंग से पेट के सहारे उतरे और ऊं भी कर रहे हैं मैया सुन ले और ऐसे लड़खड़ा करके चलने लगे। जितनी वो सुंदरी है उतना उनका स्वर बढ़ रहा है और वो तन्मय होकर के। अच्छा उस समय कृष्ण कहां है, ये दिखला रहे हैं कि यदि तन्मय होकर के कोई कृष्ण नाम करता है, कृष्ण कहीं स्वयं भी रहे होंगे ना, झट वो आ जाएंगे, वो कीर्तन में जरूर आएंगे। इसलिए जो यशोदा जी आकर्षण कर रहे हैं और वहां से आए, एकदम निकट में आए और दूर से उन्होंने आरंभ किया तभी नहीं वो सुन रहे। एकदम जब निकट आ गई तो उन्होंने मंथन पकड़ लिया और साथ ही साथ में उनका एक जूड़ा ऊपर से अंचल पकड़ लिया। जब वो पकड़ लिया तो देखा भाई ये चल रहा है, मथनी क्यों नहीं चल रही। वो साथ ही साथ में उन्होंने ऐसे फिर करके देखा, वो तो छोटा सा कन्हैया है, बस प्रेम से उनके आंखों में आंसू आ गए और उसको अपनी गोदी में ले लिया, बैठ गया गोदी में ले लिया। अभी गोदी में ले लिया और स्तन पान कराने लगी, अंचल से कृष्ण को ढक दिया। गति मंथन बंद हो गया अपने
इसमें मना करो तो
दधिमंथन बंद हो गया, आंखों से आंसू छटने लगे, इसी को रस कहते हैं। ये वात्सल्य रस है, कृष्ण को अपना प्रेम का विषय बनाया जाए और अपने को आश्रय, चार भाव में से कोई एक भाव स्थिर कर ले, कृष्ण को अपना प्रभु माने और अपने को सेवक सेविका, अथवा कृष्ण को अपना सखा माने, कृष्ण सखा है मैं उनका सखा हूं, अथवा कृष्ण को अपना पुत्र मान ले और अपने को कृष्ण का पिता माता मान ले, अथवा कृष्ण को प्राण प्रियतम मान ले और अपने को उनकी प्रियतमा मान ले। इस तरह से कृष्ण के प्रति भाव योजना करके, संबंध लगा करके भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा संबंध नहीं होने से व्रज का भाव तो कदापि नहीं मिल सकता है। इसलिए यशोदा जी यहां पर प्रेम के वात्सल्य की आश्रय है, कृष्ण जी उसके विषय हैं, उद्दीपन एक कहलाता है। कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप, बाल गोपाल का रूप, ये उद्दीपन का भाव, गोदी में बैठा लिया और दूध पिलाने लगी और साथ ही साथ उनको रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि होने लगे। साधारण लोगों को नहीं होगा, भजन करते 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 जब संसार का आवेश सब कुछ भूल जाएगा और इन लीलाओं में ऐसे तन्मय हो जाएंगे, अब शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, उस समय में भगवान की कृपा से ऐसे भाव आ सकते हैं। यशोदा मां आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, साथ साथ में दूध पिला रहे हैं, दूध अपने आप झर रहा है, उसमें दूध इतना निकल रहा है विश्व ब्रह्मांड के लोग उसमें तृप्त हो जाएं, उसी से क्षीरोद सागर उसी से निकला, यशोदा मैया के दूध से इतना दूध है, अनंत विश्व ब्रह्मांड उससे तृप्त हो जाए, किंतु कृष्ण का पेट भी उतना छोटा नहीं है, बहुत विशाल है, उनके एक एक रो में विश्व ब्रह्मांड भरा पड़ा है। इसलिए सामने में दूध को यशोदा जी ने रख रखा था गर्म होने के लिए, जब दही का उसमें जाकर देकर के उसे दही बनाया, इसलिए वो गर्म हो रहा था। उसने देखा जब हमारा कभी मौका नहीं मिलेगा जब कृष्ण हमको पिएंगे, इतना स्तन से दूध अपने आप झर रहा है, विश्व ब्रह्मांड भी पी करके अभाग है। और अगर कृष्ण का ऐसा है, उनका पेट कभी जन्म जन्मांतर में भरेगा ही नहीं, उनका इतना लंबा चौड़ा पेट, तब तो मुझे तो सेवा करने का अवकाश नहीं मिलेगा, पिछले प्राणों पर रख करके क्या करूं। यदि कृष्ण की सेवा में ही हमारा यह शरीर प्राण आत्मा नहीं लगा, इंद्रिया नहीं लगी, तो उसे मर जाना ही बेहतर। भक्तों की ऐसे ही भावना हो, यदि यह शरीर हमारा किसी कृष्ण की सेवा में नहीं लगा, इस शरीर की कोई धारण करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मानो दूध हम करके आग में या आग्नि में कूद करके मर जाऊं। यशोदा जी ने यह दृश्य दूर से देखा और देख करके उन्होंने जो है, नहीं नहीं तुम मत करो, हम अपनी सेवा बंद कर देंगे, तुमसे सेवा करेंगे, ये गुरु का काम है। यशोदा जी वास्तव दर्श की गुरु है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए दूसरों को मौका देती हैं, अवसर देती हैं, जो दूसरे भी कृष्ण की सेवा कर। गोपियां भी ऐसी हैं, लाखों करोड़ों हैं, किंतु यदि नए रूप में कोई गोपी भाव से उनकी सेवा करना चाहता है तो उसको अपने से आगे कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दे, ये दूसरों से काम नहीं होगा, दूसरों में सौ किया डा आएगा, दूसरे दूसरे ईर्ष्य आएंगे, किंतु वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं। इसलिए यशोदा जी ने कहा, थर जाओ थर, बस कृष्ण को
स्तन से छुड़ा करके बैठाना चाहा और कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उनके स्तन जोर से पकड़ लिए, पैरों से जोर से लगा दिया और मुख से भी स्तन को खूब जोर से पकड़ लिया। जो कृष्ण मैं यशोदा मैया न छोड़ा सके, अपनी पूरी शक्ति सर्वशक्तिमान है, पूरी शक्ति लगा दी जो यशोदा मैया न छोड़ा सके। और उधर देखा ना, उतना 60,000 हाथियों का बल लेकर छुड़ा रही है और छोड़ नहीं गए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छुड़ा नहीं। अंत में विकास विशाल रूप धारण किया। जब नहीं छुड़ा सकी, सोची जैसा भी कंस के यहां जाए हमारा भैया और वो छुड़ा देगा, इसलिए वहां से उड़ी आकाश में लेकर के कृष्ण को। कृष्ण ने कहा तुमको ब्रज से बाहर नहीं जाने दूंगा, अब तुमको तो मैया के रूप में हमने ग्रहण कर दिया, तू कैसे मथुरा में चली जाएगा। जोर से ऐसा खींचा जो प्राण तक खींच लिया और वो 12 कोस की या 12 मील की लंबी कंस के बगीचे पर पड़ते उससे चकना चूक कर दिया और उसका हाथ जो ऐसे ऐसे गया वो हथरस हुआ, कोई कुछ उसके रुए जहां गिरे वो हो गया राया और सब उसके
सिर का मूर्छा,
मस्तक जहां मूर्छा पड़ा था वो मूर्छा, वो सब स्थान था वैसा ही सब नाम रख दिया गया। उसी समय से ये चल रहा है, ये झूठी बात कल्पना की नहीं है, उसी समय से लोक प्रसिद्धि उन स्थानों की हो गई, वहीं पर वो गिर पड़ी, छुड़ा नहीं सकी अंत तक। उस समय कृष्ण ने कोई जोर नहीं किया, उस समय कृष्ण स्वाभाविक रूप में तभी नहीं छुड़ा सके। और आज कृष्ण सब समस्त उनकी जितनी शक्तियां हैं सब लगा दी, पैरों से हाथ से मुख से यशोदा जी को जकड़ लिया, किंतु कृष्ण यशोदा जी ने देखा जैसे ये अपराध ठीक है, बस झट झटके से दिया बैठ यहां, बस इतना ही कहा और पकड़ करके झट बैठा, एकदम हटा, एक सेकंड में नहीं लगा। कृष्ण की सारी शक्तियां सब कुछ मट्टी में मिल गई और उसको खा करके बैठा दिया। अब कृष्ण क्रोध के मारे दांत कड़मड़ी करने लगे, होठों से दबा दिया, अगर खड़कने लग गए, हमको उसने उठा दिया, अभी दूध पिया नहीं पूरा, दूध ही इसका प्यारा नहीं, इसका प्यारा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, एक बच्चे ने अपनी कमीज थोड़ी सी फाड़ दी या उसको गंदा कर दिया, मैया ने थप्पड़ मारा। अच्छे मैया प्यारा, वो बेटा उसका प्यारा है ना कि वो कपड़ा है, कपड़े के लिए बेटा ना, बेटा के लिए कपड़े, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो भक्त लोग भगवान से भी भगवान के पालन पोषण करने की वस्तुओं को अधिक स्नेह और प्रीति रखते हैं। इसलिए यशोदा माँ को दूध को रक्षा करने चले गए और कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, कुछ कर न सके। जब वो चली गई दूध को उठाने के लिए, दूध को वहां पर लेकर के रखा, पानी को उठाया, छींका दिया, पानी से मैंने उसका मुख बन गया, अब तुम मत रो, अब तुमको संत, अब तुमको कृष्ण की सेवा में हम खुद लगाएंगे, ऐसा कर करके और दूध को सांत्वना दे करके लौटी। देखा जो उठाया नहीं इधर कृष्ण ने किया किया, देखा जब मैया के सामने तो कुछ बस चला नहीं, रावण को कुंभकर्ण को हिरण्यकश को और हिरण्याक्ष को मारने में, पृथ्वी को उठाने में, गोवर्धन को धारण करने में उनको कोई भी प्रयास नहीं हुआ, किंतु माता जी के प्रेम के सामने उनकी कुछ भी बस नहीं चलता है, ऐसे वो वशीभूत हो जाते हैं प्रेम के मारे। उन्होंने देखा जैसे अब क्या करें, अच्छा मैया को भी मैं शिक्षा दू, मैया को क्या शिक्षा दें। उन्होंने पास ही में एक शिला पुत्र, शिला पुत्र माने शिला का पुत्र, पत्थर का पुत्र, वो लोढ़ा जो कि रगड़ने के लिए होता, आजकल की शायद स्त्रियां जानती भी नहीं हुई जो लोढ़ा और स्टील किसको कहते हैं, पहले वाली सब जानती थी, पीसना पड़ता था, स्वास्थ्य अच्छा रहता था, बचपन में बूढ़ी नहीं हो जाती थी, यात्रा पीसती थी, मूसल से कूदती थी, वहां कुछ बिजली का चल गया और थोड़े दिन के बाद में बूढ़ी हो जाती है, चल नहीं सकती, एक छोटी सी बच्ची चल नहीं सकती। और पहले ये सब परिश्रम का काम था, तो वो कृष्ण ने लोड़ा उठाया और झट ठुक ऊपर नहीं मारा, कहां मारा, ऊपर मारने से उसका दूध नहीं चारों तरफ में फैलेगा, नीचे गिरने से एकदम एक तमिल भी गति मंथन का वो भाग नहीं रह जाए, इसलिए एकदम नीचे की तरफ मारे, ऊपर के मारने से दिख पड़ेगा, नीचे मारने से दिखेगा नहीं। बहुत चिंता करते उन्होंने उसको मारी और थोड़ा सा सुराख हुआ और थोड़ी देर में फैल गया और वो देखने लगा, रोना भूल गया। कज्जल मिश्रित यहाँ पर आंसू सूख करके गंगा जमुना जैसे वहां पर दाग पड़ेंगे। इतने में देखा जैसे अब डर हुआ, यदि मैं आई तो मुझे तो पीट देगी, इसलिए क्या करूं, ये यहां पर यदि मंथन हो रहा, पीछे एक घर है और उस घर से बाहर में जाने का भी एक दरवाजा है, बस इस दरवाजे को खोल करके भीतर में चले गए और उसी में दधि का भांड और मक्खन नए नए सब ताजे निकले थे, बस घर के अंदर में घुस गए और घुस करके ओखल रखी थी उसको उलाटी हुई, कौवे तवे उसमें बीट न कर दे, इसलिए उसके ऊपर में चढ़ गए और ऊपर से मक्खन खा रहे हैं। अभी तक सखा नहीं आए थे, कुछ कुछ दूर कौओं ने देखा, कौए आने लगे, बंदरों ने देखा, बंदर आने लगे। कृष्ण निकालते हैं बंदर हाथ से उनका पकड़ना चाहते हैं, बंदरों को कुछ खिला रहे हैं, कुछ कौओं को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। पूर्व जन्म में जब राम वो थे तो राम के लिए सीता जी को पता लगाने में और उनके लिए युद्ध करने में अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। रामचंद्र जी उनके खाने की व्यवस्था कुछ नहीं की, जहां और फल से फलों से एकदम बगीचा भर जाता, कितना खाएंगे लोग, खा खा करके कितना होते, कौवे भी होते थे सभी, आजकल लोग मारते हैं, मार करके खत्म करते, वहां पर फसल भी नहीं होती है, आजकल पेड़ है किंतु उसमें फल नहीं लगते हैं, इसी कारण से ये सब पाप है। बंदरों को लेकर के पश्चिम देश में भेज रहे हैं और वहां पर उनको इंजेक्शन देकर के कितनी बुरी तरह से उसे मारते हैं, उनकी हाय लगती है, ऐसे ही देश नहीं ये बिगड़ गया, इसलिए अपने बंधुओं को दे रहे हैं। इधर में उधर का दरवाजा खोल दिया और आंगन वाला दरवाजा है उसको बंद थोड़ा सा कर, जो सुधा जी आकर के देखने लगी, कहां गया कहां गया, बातचीत हो गया, देखा जो गधी जो पतली हो गई है चारों तरफ में फैल गई है, कहां गया, उनको एक सेकंड भी नहीं लगा आप समझते, उसके पैर जो गधी में पड़े हुए थे उसका छाप कुछ लगा, देखा जो घर की तरफ में गया है, इसके पैर के छाप, इसलिए बस घर ही के तरफ में जाकर के धीरे से एक कपाट खुला और ऐसे बेकार ही ये तो मंत्रों को खा रहा है, अपने भी खिला रहा है और दूसरों को जा रहा है और भी खिला रहा है, ठीक है, मुस्कुराया, बड़ा चंक है, आज तक मुझे विश्वास नहीं था जो चोरी करता है, क्योंकि देखते ही ये चोरी करना तो अपने घर में भी अब करने लगा, मुझसे भी डर नहीं, यदि इस समय इसको शासन नहीं किया जाए भविष्य में बड़ा दूर अंधर होगा, इसलिए अभी शासन करना चाहिए, पर ब्रह्म को शासन करने जा रहे हैं। एक छोटा सा बेंक की लठिया उठा ली और उठा करके धीरे से जब उधर में देख रहा है खा रहा है और कभी कभी सशंकित होकर के इधर देख रहा है उधर देख रहा है, उसी समय में झट कबाट खोला और झट कोने में चली गई, देख नहीं सका। थोड़ी देर के बाद में जब वो फिर उतारने लगा तो थोड़ी सी बहुत धीरे धीरे जैसे बिल्ली पैर उठाती है, सूखे हुए पत्तों पर भी पैर पड़ेगा तो मालूम नहीं होगा, ऐसे धीरे से पैर उठाती है धीरे से रख, इसलिए कृष्ण समझ न सके। जहां पकड़ने को चेष्टा की क्यों बंदर भागे और कौए भागे, कृष्ण सोच रहे हैं कौए क्यों भागे और ये बंदर क्यों भागे, यहां पीछे देखा तो मैया ऐसे पकड़ मच्छर कुट करके राजनाथ कृष्ण भाग रहे थे और पीछे से यशोदा जी दौड़ रही है। काल जवन जरासंध इनकी तो बात ही क्या, बड़े बड़े योगी महात्मा लोग अपने निर्मल हृदय से भगवान को अपने हृदय में उनके चरण कमल को रखना चाहते और वहीं लोग नहीं पकड़ सकते हैं, तो काल जवन इत्यादि क्या पकड़ेंगे। आज जो सोदाना उसे भी अधिक तीव्र गति से उनको कैसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में तू बड़ा ठीक हो मारू मैया मुझे मत मार, मैंने क्या किया, तो तुमने खंड क्यों छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, तू चोर है, मेरे कुल में चोर नहीं है, मैया तेरे कुल में, तेरे पिताजी के कुल में कोई चोर होगा, हमारे वंश में कोई चोर मान। फिर कृष्ण पीछे तरफ में सर गए, तुमने ये बतलाओ सच सच, तुमने इस भांड को क्यों भांग तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, तब कैसे टूट गया, मैया मैं सचता हूं छोड़ दोगी तो कहा छोड़ दो, तो तुम जिस समय जा रही थी हमको रख करके और जल्दी मैं हड़बड़ा करके जा रही थी, तेरे पांव के इतने मोटे मोटे कौले चांदी के और उसे जो ठोकर लगी तुम्हें तो पता नहीं उस ठोकर से वो टूट गया, मैं क्या कर रहा, मेरा तो इसमें कुछ नहीं, तो देखो तो इतना झूठ कैसी कैसी बुद्धि निकालता है। अच्छा ठीक, फिर जब उठाया दे फिर रोने लगे, ऐसे हाथ कर रहे हैं, एक हाथ तो उसने पकड़ रखा है यशोदा जी ने दाहिना हाथ और बाएं हाथ से किस प्रकार से कर काजल मिल रहे हैं और एकदम यहां तक फैल रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और गले में त्रिवली पड़ी हुई है और साथ साथ में सुंदर सुंदर मोतियों की माला भी उनके पर ऐसे झूल रही है, बड़ा सुहाना रोना भी बहुत कौन है, कृष्ण का रोना भी मधुर, चलना भी मधुर, हंसना भी मधुर, उनका सब कुछ मधुर है, मधुराधि पते अखिलम मधुरम 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 सब। देवता लोग इस दृश्य को देखने के लिए ललचते हैं, भक्त लोग इन लीलाओं का ध्यान करते हैं। अब वो कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिए, जब रोने लगा भी तो गोपियों ने कहा क्यों इसे मार रही है, एक तो तुम्हारी इस अवस्था में पुत्र हुआ एक ही पुत्र और तुम उसको मार रही है, ये रो रहा है, छोड़ो छोड़ मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक इसको सुधार नहीं दूंगी, फिर अच्छा तो छोड़ अभी मारूंगा नहीं तुम्हें बांध दूंगी, वो एक तुम खल एक तुम चोर और वो महाचोर जो चोरी में सहायता करता है, तो तुम खल और वो उदूखल, उदूखल मैंने वो खल, दोनों को एक साथ में बांध करके दंड दूंगी, ऐसा कर करके अपने इस केस को छोड़ा, केस का बंधन का जो रेशमी फीता था उसको निकाल लिया, थोड़ा सा इतना बड़ा और छोटी सी तो कमर लपेट करके कृष्ण को बांधना चाहिए, किंतु वो दो अंगुल कम पड़ गए। फिर उन्होंने गोपी से कहा एक गोपी एक रस्सी ले आओ तो घर से, तो वो रात खींच गई, हम करेंगे तुम अपमान दो तो तुम मानेगी नहीं, अच्छा तो कुटालो बस इतनी रस्सी पड़ी थी बहुत सी गाय को इतना उठा कर लेकर के पटक दिया, बांधो उसको तुम देखिए कैसे बांधो, अरे ब्रह्मा ने इसको ललाट में बंधन ही नहीं लिखा अब तुम बांध देगी, ये कभी संभव नहीं। पर ये आज यदि सवेरे से शाम तक एक दिन दो दिन तीन दिन दस दिन बीस दिन होगा बिना बांधे से छोड़ूंगा नहीं, बांध करके ही छोड़ूंगा।
रस्सी आने लग गई
और गोपियां भी कौतुक देखने लगी, कोई ताली बजा रही है, कोई हंस रही है, आज देखें कि बेटा जीतता है कि मैया जीतती है।
बेटा कहा कि मैं जीतूं और मैया करेंगे मैं जीतूंगा।
पास पड़ोस की सभी रस्सी लाई गई, जोर दिया गया, रस्सी मिलो लंबी हो गई, किंतु एक बार भी कृष्ण को बांध कर कुंडल में बांधने दो अंगुल को।
ये दम अंगुल क्या है?
जोग माया का भाव। कृष्ण सोच रहे हैं कि मैया यदि बांध देगी तो मेरी सब बाल्य लीला समाप्त हो जाएगी, मेरी गोपियां मेरी दर्शन के लिए तड़प रही हैं, उनको दर्शन नहीं दे सकते, घर में चोरी कर रहे हैं, बछड़े हमारा बिना देखे दूध नहीं पिएंगे और गाय न दूध देंगी, ये सब मिला हमें अपने सखाओं के साथ में कैसे खेलूं, इसलिए मैया मुझे मत बांध। जोग माया ने देख लिया, उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु चाहते हैं कि मैया न बांधे, इसलिए जोग माया के प्रभाव से वो दो अंगुल कम पड़ता गया, रस्सी लंबी होती गई, कृष्ण की सोने की कराग्नि केवल द्वादश अंगुल 12 अंगुल ही बच गई, बड़ी नहीं रस्सी बढ़ती गई, किंतु वो बांध न, ये जोग माया। और भी आदमी यदि हजार साधन करके कृष्ण को अपने प्रेम से बांधना चाहे वो नहीं बांध सकता है कदापि, उनकी कृपा की भी जरूरत है। तो एक जो भगवान की कृपा है ये एक अंगुल, और साधकों की चेष्टा ये और एक अंगुल, ये दो अंगुल। हम चेष्टा भी करेंगे, साथ साथ में ये भावना रहेगी कि कृष्ण की कृपा हो तब हम साधन भजन करके उनका दर्शन कर सकते हैं प्रेम से प्रसन्न। हमारा साधन भजन भी एक अंगुल और उनकी कृपा, ये दोनों मिल करके तो दो अंगुल बनते हैं। अब यशोदा माँ अपने परिश्रम से बांधना चाहती हैं, किंतु कृष्ण सोच रहे हैं मैं न बांधूं, थोड़ी देर के बाद में दो बाहर हो गया, किसी ने खाया नहीं, बांधते बांधते थोड़ी देर के बाद में कृष्ण ने देखा कि मैया के पसीने से बुंदों से वो एक बन दिए और मुख लाल हो गया। मैं अपनी छोटे से लाला को बांध नहीं सकती, बीरस होकर के नारायण शतन हे नारायण, मैं इतनी लज्जित हो जाऊं गोपियां मुझे तो रिझाएंगी जो अपने बेटे को नहीं बांध सकती, और उन लोगों ने मना किया था तभी मैं बांध रही, और मैं अपना कैसे मुख दिखाऊं। कृष्ण जी समझ गए दृष्टा परिश्रम, कृष्ण कृपया सी संबंधने कृपा करके उनका उन्हें जोग माया की जो शक्ति इच्छा थी वो तरल होकर के बह गई, जोग माया वहां से हट गई और उनकी कृपा शक्ति वहां पर प्रादुर्भूत हुई। भगवान की जितनी भी शक्तियां समस्त शक्ति कृष्ण की जो कृपा शक्ति है ये प्रधान है, यदि कृष्ण कृपा कर दें तो सभी कुछ संभव हो सकता है। बस देखा जो यशोदा मैया अत्यंत परिश्रम से प्रांत और देख न सके, बस साथ ही साथ उनकी जो जोग माया की शक्ति थी हट गई और सब रस्सियां रह गई, और कृपा से स्वयं एक जो उनके जुड़ा बांधने का जो रस्सी थी बस उसी रेशम की डोरी से ही वो बंध गए, और उसी से बांध करके ओखल के साथ में बांध दिया और उनको रख। पर ये आप देखो थोड़ी देर के बाद में बच्चों को कहा जो देखना इसकी रखवाली करना, मैं भी जाती हूँ फिर घर का काम करने के लिए, वो लौट करके आए किंतु चित्त तो वहीं रहा, क्या होगा क्या प्यार हुआ और वो नहीं मैंने ऐसा क्यों बांधा उसको, अपने तरफ भी गई। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, कृष्ण ने सखाओं को बुलाया, सखा देकर के ताली बजाने अब कन्हैया कैसा, और उसको ऐसे ऐसे करता थे रिझाने लग गए, कृष्ण को रो रहे थे, अब इनका हंसता हुआ मुखड़ा देख करके ये भी कुछ मुस्कुराने लगे, दाग तो पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में उन लोगों ने कहा कि इसको खोल दिया जाए, मतलब उन्हें लग जाए, कहा कि मैं खोल दू, जितना खोलता है किंतु खुलता नहीं, सब सखा लोग बारी बारी से चेष्टा की, बात्सल्य रस का बंधन सख से नहीं खुलेगा, बात्सल्य रस का दिया हुआ बंधन दांत वात्सल्य अथवा यदि गोपियां कोई राधा जी आती ना कुछ क्षण मात्र में उसको खोल सकती, किंतु उस समय वो अभी छोटी है। एकदम बालिका कृष्ण से भी राधा जी
15 दिन
छोटी हैं, और सखियां तो और भी छोटी हैं, कोई 2-2.5 वर्ष की छोटी हैं, इसलिए वो नहीं आता। सखा लोग बहुत तेज नहीं खुला, सब लोगों ने उसको धकेला। कृष्ण आगे आगे चले, उनको याद पड़ी नारद जी के अभिषम पास के जमलाजुन नामक दो वृक्ष होकर के गंधर्व लोग वहां पर पड़े हैं, उनका भी उद्धार करना है, इसलिए वहां पर खेते खेते ले चले और कृष्ण भी वहां पर चले। घर के बाहर में जबकि सब लोगों ने मिल करके उखल को बाहर दी, किंतु वो दोनों वृक्षों की उसमें अटक गया। देखा जब बाहर नहीं जा रहा, कृष्ण बाहर उसमें पटे हुए हैं, खुद तो उस पार चले गए और वो खुद इस पार रह गए। सोचा जी आप कैसे चले, सखा उन्हें बहुत चेष्टा की ओखल को हटाने के लिए, नहीं लगा। तब कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगाया, जोर लगाते हैं उनके पैरों का जहां स्पर्श हुआ, दोनों वृक्ष बहुत शब्द करते हुए और वो इतना जोरों से शब्द हुआ, सब लोगों ने देखा कि अर्जुन आंधी के ये क्या हो गया, प्रलय हो गया न क्या। इतने नंद बाबा स्नान कर रहे थे ब्रह्मांड घाट में और वहां से दो दौड़े सखा लोग और सब जगह से दो। कृष्ण वहीं पर जरा होकर के बैठ गए, सखा लोग भी डर गए, जो सुना भी तो सभी लोग वहां नंद बाबा दौड़ करके आए, देखा अरे ये तो मर गया होता, किसने बांधा। जल्दी से आकर के कृष्ण को गोदी में ले, धीरे धीरे दांत खोलने लगे, बोले तो बेटा किसने बांधा। कृष्ण तो अब देख करके रोने लगे, बीच में बंद हो गया था ना, अब जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो मैं कह किसने बांधा, बतलाओ तो आज मैं जिसको उसको दंड दूंगा। कृष्ण ने ऐसे कहते मैया ज्ञान बांधा, अच्छा तू इतनी निष्ठुर हो गई, मैं तो जानता था कि बहुत कोमल रहती है, तुम्हें उसने बांधा। धीरे धीरे खोला किसने, तो बाबा जी मिस्त्री या लड्डू के गुड़ के लड्डू पड़े थे, पॉकेट से निकाल करके कृष्ण को। जसोदा जी देख रहे हैं, सब ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, जसोदा जी तो एकदम काट पत्थर की भांति हो गए। यदि ये मर गया होता तो नंद बाबा बिगड़ गए हैं मेरे ऊपर, अब क्या होगा। नंद बाबा ने कृष्ण को बलदेव को यहां पर बिठाया और बिठा करके चले गए ब्रह्मांड घाट में स्नान कराया। अब तक 3-4 बज चुके हैं शाम, आज भर में रसोई नहीं बनी, सब लोग भूखे, नंद जी नहीं पाए, उपानंद जी नहीं पाए, कृष्ण बलदेव जी नहीं पाया, जो सोदारोहणी आज रसोई नहीं बनी। थोड़ी देर के बाद में घर आए, तब तक शाम हो गई। रोहिणी मैया और उपानंद जी की पत्नी ये सब मिलकर के राज्य से जसोदा जी का बिना अब तड़प रही है तो मर जाएगी। कृष्ण को यदि नहीं ले आया जाए, और वो दरवाजे पर यहां पर पुरुष लोग बैठते हैं बैठक में, वो लोग बैठे थे, उपानंद की पत्नी और रोहिणी मैया और सब गई वहां। कृष्ण अरे आ जाओ मेरी गोद में, चलो मैया की गोद। कृष्ण जाऊं हूं मैं नहीं जाऊं। अरे रहेगा कहा, नंद बाबा के यहां, बाबा के यहां। अरे दूध कहां से पिएगा, तो नंद बाबा मुझे मिश्री और धारोस में गैया का दूध पिला दे। सोएगा कहां, तो बाबा की गोदी में। खेलेगा किसके साथ, गाऊ भैया के साथ। बाई चांस उस दिन दाऊ भैया नहीं थे, दाऊ भैया चले गए थे निमंत्रण में अपू भैया के साथ, नंद उनके उपानंद जी के। जब आए थे उनको बड़ा क्रोध हुआ था जी किसने इसको बांधा, किंतु जब सुना जी मैया ने बांधा तो उनका हुस्न भी दुरुस्त हो गया। जसोदा का मैया जो भी डर गए, कुछ नहीं कहा। तो आज बलदेव के साथ में खेलेंगे। तो उपानंद की पत्नी कहती है यदि तेरी मैया जैसे आरंभ हो जाए तो मैंने मर जाए तो इतना सुनते ही अब कृष्ण से राह ने मैया मैया कह करके हाथ ऐसा किया। रोहित मैया ने अपने विरोध नहीं उठा, सब लोग रोने लगे, कृष्ण और जोर से रोने लगे, यशोदा मैया तो और जोर से रोने लगी, बैठी है यशोदा जी के गोदी में उसको देखा, कृष्ण रोने लगे, यशोदा जी रोने लगे, रोहिणी रोने लगे, नंद बाबा भी रोने लग गए, सब समाज एकदम रोने लगे। इस प्रकार से कृष्ण ने सबको उसमें हृदय सागर में एक तरह मस्जिद कर दिया। थोड़ी देर के बाद में जब कुछ शांत हुआ, रोहिणी जी ने कुछ संक्षेप में रसोई बनाई और नंद बाबा को बुलाया गया, उपानंद जी आए, सब लोग आकर के उन लोगों को खिलाया और कृष्ण को बलराम की गोदी में लेकर के दाहिने तरफ में बलदेव और बाएं तरफ में कृष्ण लेकर के उनको खिलाया। इसके बाद में अपने थोड़ा सा खाया, इसके बाद में कृष्ण को और बलदेव को लेकर के रोहू मैया और यशोदा जी अपने रूप में बैठ करके और सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से यशोदा को भी खिलाया। इस प्रकार से ये दामोदर लीला दामोदर बंधन, कृष्ण को कोई वशीभूत नहीं कर सकता, केवल प्रेम के द्वारा ही उनको वशीभूत किया जा सकता है, इसलिए ये दामोदर बंधन। दामोदर इसलिए भी कहा जाता है कि कृष्ण का ध्यान होने पर गोपियों ने कृष्ण के पीताम्बर से गोपियों के अंचल को बांध रखा, जैसे कि कृष्ण छोड़ करके न जाए, इसलिए या राधा जी ने ही अपने प्रेम से कृष्ण को बांध दिया, ललिता जी ने बांध दिया डोरी से राधा जी के साथ में, ये कहां भाग करके जाए, इसलिए वो राधा दामोदर है, दामोदर मात्र उनकी पूजा करती है। इस तरह से ऐसे ऐसे सुंदर लीलाओं को वर्णन करते हैं शुभानंद ब्रह्मचारी जी। अब इसके बाद की कथा को कहेंगे, हमने बहुत कुछ समय ले लिया, बीच बीच में ऐसे कभी कभी समय ले लिया।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद
जय जय।
हम लोग दशम स्कंद में कृष्ण के दिव्या चक्र को हम लोग सुन रहे हैं। बाल्य लीलाएं समाप्त हुई है, अब हम लोगों के पौबंध लीला का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बत्सासुर का वध और इसके बाद में भीमकासुर का वध इत्यादि के भजन में सबसे पहले बाधा है अज्ञानता का। अज्ञानता होती है अपने संबंध में, भगवान के संबंध में, उनके भजन के संबंध में, क्या नहीं करना चाहिए इसके संबंध में बहुत सी अज्ञानता है। तो हम लोग, हमारे आराध्य कौन है, मैं कौन हूं, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए, ये सबका ज्ञान नहीं होने से ही भगवान का शुद्ध रूप से भजन नहीं हो पाता। इसको दूर कर सकते हैं केवल मात्र गुरु, जिनको कोई गुरु नहीं है और भी वैष्णव भक्त गुरु नहीं है, वो जितना ही शास्त्रों को जानने वाले हैं, जितने बड़े धारी विद्वान हैं, जितने शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, यदि वैष्णव भक्त गुरु नहीं है
तो वो अज्ञानता उनकी रहे, बिना गुरुदेव के अज्ञानता दूर नहीं हो। गुरु भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक कर्मी गुरु होते हैं, जैसे आंख बंद करके मत सुनिए, आंख खोल करके सुने, आंख बंद करेंगे तो कान भी बंद हो जाता है, दोनों एक साथ में बंद होते हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करो, आंख खोल करके सुनिए, जहां आंख बंद होगी कान भी बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा तो आलस्य आ जाएगा, आलस्य आने से नींद आ जाएगा। घर में बहुत परिश्रम करते हैं, और एकादशी के दिन में हाथ वो काटते काटते सब्जी अमन फल, इसमें नींद नहीं आएगी। आज यहां हरि कथा आरंभ होगी तो आराम से नींद आती, इसे आंख बंद मत कर। तो मैं क्या बतला रहा था, गुरु कर्मी एक गुरु होता है। कर्मी गुरु किसको कहते हैं, जैसे एकलव्य था उसको धनुर्विद्या सीखी, ये कर्मी गुरु है। स्कूल में पाठशाला में आजकल निरीश्वर शिक्षाएं सीखती हैं, ये सब कर्मी गुरु। संसार की कोई भी चीज सीखने के लिए जिसको हम गुरु बनाते हैं वो सब कर्मी गुरु। एक कमान यहां पर जो एका चलाता है वो बड़े बड़ा ये भी गुरु कहता है, ये गुरु मेरे हैं, ये सब कर्मी गुरु कहलाता है। जिस समय में एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में गए, द्रोणाचार्य तो गुरु ठीक थे, उन्होंने उसे पूछा भाई तुम कौन सा वंश का है, कैसा है, अपने वंश का जब परिचय दिया तो इन्होंने कहा कि एक बात करो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जगत का ध्वंस करेगा सीख करके, तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या द्वेष है, तुम पांडवों का बराबरी करना चाहता है, अर्जुन को तुम परास्त करना चाहता है, इसलिए जहां पर कि द्वेष हिंसा है ऐसे लोगों को मैं शिष्य नहीं बनाता। किंतु उसने ठान लिया कि हम तो इन्हीं को गुरु करें, इसलिए उनके मूर्ति जैसा ही एक मट्टी की मूर्ति बनने बना लिया और उसी को लक्ष्य करके उनको प्रणाम करता पूजा करता और उन्हीं को गुरु मान करके धनुष बाण सिखलाना सीख। सीखते सीखते बहुत प्रवीण हो गया। एक दिन अर्जुन इत्यादि सब अपने शिष्यों को लेकर के द्रोणाचार्य वहां पर पधारे। उन्होंने देखा उनके साथ में एक कुत्ता था, कुत्ते ने तो दूर से उसको देख लिया भील को और वो भौंकने लगा, और बहुत दूर से ये लोग देख नहीं रहे किंतु वहीं दूर से शब्द का शब्द सुन करके कुत्ते का भौंकना सुन करके और वहीं से बाण मारा कि उसके कहीं भी नहीं लगा, साथ ही साथ जो भौंक रहा था वो भौंकना बंद हो गया, एकदम बाण उसके अंदर में भर गए। ऐसे हाथ लव भाव से काम किया, लव भाव से बड़ी सफाई और बड़ी फुर्ती के साथ कई खरोंच नहीं आए। इन लोगों ने कहा अरे ये क्या, इधर सुनो इधर सुनो, कहा खरोंच नहीं आई और उसका मुख बंद हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा जैसे ये कोई मालूम होता है बाण चलाने वाला कोई बहुत अच्छा सिद्ध है, जिधर से बाण आता उसी तरफ में वो चले। थोड़ी देर के बाद में देखा जो एकलव्य वहां पर खड़ा था धनुष बाण लेकर, तू कौन है, मेरा नाम एकलव्य है,
तुम ने बांध चलाए वो तो हाँ मैं बहुत सफाई के साथ। तुम्हारा गुरु कौन है? तो गुरु हमारे आप ही द्रोणाचार्य। अरे तो मैंने तो तुमको सिखलाया नहीं गुरु जी, मैंने आपकी मूर्ति स्थापित की और उसी से सीख रहा हूं, आपने तो मुझे शिक्षा नहीं दिया किंतु आपकी मूर्ति से मैं सीख रहा हूं। मैं कह साहब तो बहुत तुम प्रवीण हो गया, अब तो मुझे दक्षिणा कुछ दो। कहे गुरु जी आप जो दक्षिणा मांगेंगे दे। बस साथ ही साथ अजय क्या दक्षिणा चाहिए? तुम अपना दाहिना हाथ के इस अंगूठे को काट करके दे दो। ऐसे बांध पकड़ा जाता है ना, ये अंगूठा नहीं रहेगा तो बांध ऐसे कैसे चला है? ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए अंगूठा ये तुम्हारा जगत का ये विनाश करेगा, ये ऐसा ठीक हुआ। बस अंगूठा मांगा, साथ ही साथ तलवार से काट करके उनको दे दिया। अजय ठीक देखो कैसी गुरु भक्ति। किंतु शास्त्रकारों ने कहा ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के इच्छा अनुसार उपदेश अनुसार चले तो उसको कहते हैं शिष्य। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता उसको शिष्य नहीं कहते। उन्होंने उसको शिक्षा देना नहीं चाहा था, वो आपके साथ में खेलने जा रहा था और पाप में निमग्न होकर के और नरक जाएगा, लोगों के साथ में वो विनाश करेगा। उसके विनाश को बंद करके उसको बचाना चाहते थे किंतु नहीं, पीछे से क्या हुआ? पीछे से एकलव्य कृष्ण का अर्जुन का विरोध किया और उनसे युद्ध किया। कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट दिया। इसलिए एकलव्य का जो गुरु करना है, गुरु कर्ण है, ये कर्मियों का गुरु कर्ण है, इससे परमार्थ का कोई भी संबंध नहीं है और ये गुरु है ही नहीं। एक शिष्य और है और एक गुरु और कर्ण था, वो गया द्रोणाचार्य के यहां। आप हमको भी जैसे अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं मुझको भी दी, तुम किसका बेटा है? तुम्हें राधेश
राधेय
राधेय का पुत्र। राधेय कौन है?
अधिरथ।
तो अधिरथ नाम का एक सुत पुत्र था, वो रथ चलाता था। नहीं मैं वंश देखना चाहता हूं कि ऊंचे वंश का है कि नहीं, उसमें सहिष्णुता है कि नहीं, उसमें दया है कि नहीं, उसमें सत्यवादिता है कि नहीं। भाई तुमको नहीं पूछा, वो चला गया। मैं अर्जुन को किसी न किसी प्रकार से जरूर नीचा दिखाऊंगा और उसको मारूंगा। इसलिए वो परशुराम के पास गया। परशुराम जी से जाकर के बोला बड़ा सुंदर सुकांत कुंती का पुत्र, तो सीधे जाकर तुमको प्रणाम किया। परशुराम जी ने पूछा क्या चाहते हो? मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं और आपकी जितनी भी विद्याएं, शास्त्र की विद्याएं, पारमार्थिक विद्याएं, सब कुछ को मैं लेना चाहता हूं। अजय ठीक है, तुम्हारा कुल का परिचय क्या है? तो मैं ब्राह्मण बालक। पिता का नाम क्या है? ब्राह्मण का एक पिता का नाम, ऐसे ही ब्राह्मण का अमुक शर्मा नाम बतला दिए। जो ठीक है, जब तुम ब्राह्मण का लड़का है, तुम्हारे पिताजी का नाम बतला रहा है, तो ठीक है मैं तुमको शस्त्र विद्या देता हूं। मैं दूसरों को नहीं देता, ब्राह्मण बालकों को ही दिया करता क्योंकि उनमें सहिष्णुता होती है। ये ठीक है। तीन चार वर्ष वहां रहा और उन्होंने खूब अच्छी तरह से उसे समस्त धनुष बाण सिखलाए और शास्त्रों का तात्पर्य भी उसको बतलाया। जब वो सीखना उसका जब परीक्षा ली और पूर्ण हो गया तो अर्जुन से भी अधिक धनुर्धर हुआ, किंतु अर्जुन में जो सहिष्णुता है वो कहां से उसमें आएगी? और गुण उसमें नहीं थे। जब वो पूरा सीख लिया तो उन्होंने कहा जैसे इसको सचमुच में मैंने शिक्षा तो दे दी किंतु ये योग्य शिष्य है कि नहीं जरा देखो, तो मुझे भूल हो गई, पहले मैंने परखा नहीं, अब जरा परख। बस जान बुझ करके उसके गोदी में अपना सिर रख दिया और वहीं पर थोड़ा सा लेट गए, नींद सी आ गई। अब वो तो भगवत अवतार है, उन्होंने ऐसी प्रेरणा की एक
लाल कीड़ा
वज्रकीट
वो निकल करके और उनके पैरों में छेद करने लग गया। वो जिसके पैर ऊपर में रखा था उन्होंने पैर शिव रखा, तो कर्ण का ये जन्म में वो लाल कीड़ा वज्रकीट छेद करने लग गया। इस पार से छेद करके उस पार निकल गया, रक्त की धारा बह निकली और उनके सिर में जब लगा तो अरे ये क्या हुआ, उनकी नींद खुली, देखा तो एकदम लहू लुहान हो गया है। बेटा ये क्या हुआ, तो आप तो सो रहे थे, एक कीड़ा हमको यहाँ पर काटने लगा, हमने देखा जी एक कीड़े को हटाऊं तो अब पैर हिल जाएगा, आप उठ जाएंगे, इसलिए मैंने कीड़े को हटाया, इसलिए काट करके इधर में निकल गया और रक्त बढ़ने लगा। अरे तू बता तो ठीक बता, अभी नहीं बतलाएगा शस्त्र, अभी तुमको अभी संपात से जला करके भस्म कर दूंगा, तू किसके बेटा है, ठीक ठीक बताओ, तुम ऐसा मालूम है तुम क्षत्रिय है। तो हाथ करके तुम कांपने लगा, अरे हाँ सतु तुम है, किसका बेटा है, राधे का तू बेटा नहीं है, तो जरूर किसी क्षत्रिय का बेटा है। मैं समझ गया, ध्यान लगाया, देखा रही ये तो कुंती का पुत्र है। अरे जाओ, तुमने हमसे झूठ बोला और झूठ बोलकर के सारी विद्याएं ले, जिस समय समय पड़ेगा उस समय सारी विद्याएं तुम्हारी खुल जाएगी, कोई भी विद्या काम में नहीं है। एक शिष्य और गुरु है, गुरु तो ठीक है परशुराम जी जगत गुरु है, किंतु ये उनको झूठ बोल करके पहले ही से आरंभ किया, इसलिए विद्या काम नहीं आई। ऐसे गुरु और शिष्य से भी काम नहीं चलता, इसमें परमार्थ नहीं है, इसलिए ऐसे गुरु करने वाले हैं ये भी। एक गुरु शिष्य का हम और देखते हैं, एक शूद्र का लड़का शंकर जी की उपासना का था, ये रामचरित मानस की कथा है, और वो फिर आप बंद मत कीजिए आप खोल करके, तो वो शंकर जी की पूजा करता, दैववश से उनको एक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण से भेंट हो गई, उन्होंने उससे दीक्षा ली, उनको भगवान राम का मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन वो पूजा कर रहा था शंकर जी की, उन्होंने कहा बेटा शंकर जी को तू गुरु मान, और उनके आराध्य राम है, शंकर जी के आराध्य तू राम की भी, राम का नाम जो मंत्र दिया है उसको भी तुम कर, तो तेरा कल्याण होगा। शंकर जी को हनुमान जी को ये गुरु समझना चाहिए, उनकी कृपा से भगवान के चरण में रति मति होती है, इसलिए तुम उनको प्रणाम करो, किंतु तुम आराध्य देव तुम राम को ही मानो, क्योंकि तुमको मैंने मंत्र दिया है। उसने कहा जो आप हमारे गुरु जी हमारे भगवान को निंदा कर रहे हैं, शंकर जी से बढ़कर के और कौन है, शंकर जी त्रिभुवन के प्रभु हैं, वो स्वयं पर ब्रह्म हैं। और गुरु जी ने कहा जी देखो ऐसा मत कहो, एकदम बिगड़ गया उनको मारने के लिए दौड़ा और अरे तरे करके गाली गलौज कर ली, जब मारने के लिए दौड़ा इतने में वो शंकर जी की मूर्ति वहां जो पूजा कर रहा था उसमें से बहुत शंकर जी एकदम बड़े सुंदर रूप में निकले, अजय दोस्त तो हमारे सामने गुरु जी की निंदा कर रहा है, राम हमारे आराध्य हैं और तुमको तुम सम्मान नहीं देता, मेरी आराधना से केवल काम नहीं चलेगा, हमारी आराधना करके भी भगवान से जो द्रोह करता है राम और कृष्ण से, उन गुरुद्रोहियों को मैं देखना नहीं चाहता, जाओ तुम अभी करोड़ों जन्मों तक नरक में जाओ। जब ऐसा संपाद दिया तो गुरु जी ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आपने ये किया है, ये अज्ञानी जीव है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए, अब करोड़ों जन्म तो बहुत लग जाएगा, न जाने करोड़ों जन्म।